ओम शांति। आज हम सब प्यारे प्यारे बाप दादा के अति प्यारे प्यारे बच्चे पुनः फिर से इस डायमंड हॉल में हर 5000 वर्ष की तरह इकट्ठे हुए हैं। इसलिए के अपने जीवन को डायमंड जैसा अर्थात बाबा के द्वारा हीरे तुल्य बनाने के लिए, ताकि नई सतयुगी सुख की दुनिया स्वर्ग को लाने के हम सब उंगली लगाकर निमित्त बन सकें और भगवान के द्वारा परमात्मा के द्वारा अपना जन्म जन्म का वो भाग्य बना सकें जो दुनिया में ना आज तक किसी ने बनाया है ना आगे कोई बना सकता है। तो अपने इस भाग्य पर इसकी स्मृति करके प्रसन्न होकर अगर आप ताली बजाना चाहें तो कोई हर्ज नहीं। आप देखिए कि विधि से सिद्धि होती है, ये तो हमने सुना है। छोटी छोटी बातों में भी सफलता जब भी मिलती है, जबकि उस कार्य को ठीक तरीके से किया जाए, जितना ठीक विधि उतनी ही पूरी सिद्धि, अधूरी विधि तो अधूरी सिद्धि। लेकिन हम यहाँ कोई साधारण विधि और सिद्धि की बात नहीं कर रहे। हमारे परम पिता ने, परम शिक्षक सदगुरु ने तो कमाल ही कर दिया कि इतनी पुरानी तमोगुणी विकारों से भरी हुई पतित दुख की दुनिया को एक ऐसी विधि से जो बहुत ही आसान है सतयुग में परिवर्तित कर दिया। और हम सब उस कार्य के साक्षी भी हैं और भागीदार भी हैं। तो जिसको कहा जाता है कोई ऐसी भी विधि दुनिया में हो सकती है कि युगों तक बड़े बड़े बाबा कहते हैं, महात्मा, शास्त्री, विद्वान, पंडित, वैज्ञानिक जो कार्य को करने की कोशिश करते रहे लेकिन उल्टा होता रहा, मर्ज बढ़ता गया, जूं जूं दवा की और ही दुनिया तमोगुणी होती गई, दुख तनाव बढ़ता गया, उसको क्या कहा जाए, जादू कहा जाए या शुभ मंत्र कहा जाए? ये शुभ मंत्र से हमारे परम पिता उस दुनिया को चुटकी से, एक चुटकी बजाकर स्वर्ग बना देते हैं। इसके लिए आपको ताली नहीं बजानी चाहिए। आपने दुनिया में ऐसा कोई जादूगर देखा? वो तो हाथ की सफाई वाले जादूगर होते हैं, लेकिन सच्चा सच्चा जिसको भगवान को कहते हैं जादूगर, सौदागर, रत्नाकर, तो उस जादू का मंत्र उन्होंने हमें भी दिया हुआ, शिव मंत्र है। वास्तव में वो शिव मंत्र है, छोटा सा ही मंत्र है। तो मंत्र से हम उस बहुत सहज विधि से सर्व सिद्धियों को और सदा के लिए प्राप्त कर लेते हैं। क्या किसी ने ऐसा सोचा, किसी के स्वप्न मात्र में, ख्वाब में, ख्याल में ऐसा आया होगा? हमारे ख्याल में भी था ऐसा? क्या सोचिए, ये दुनिया के हिसाब से तो बाबा के बच्चे साधारण हैं। जब ब्रह्मा जी कोई नहीं कोई पहचानता हमारे पिता को, और साधारण शरीर धारण में आए हुए शिव बाबा को कोई नहीं पहचानता, तो आपको क्या पहचानेगा? परंतु बाबा कहते हैं कि आप तो अपने आप को पहचानो। पहचाने हुए तो हम हैं, लेकिन स्मृति में लाओ। बस इतना ही काम हमको करना है कि बार बार माया हमारी आंखों में धूल झोंकेगी और हमने ज्ञान का सुरमा लगा के अपनी स्मृति को वापस लाना है। जितनी स्मृति को वापस लाएंगे या सदा स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, तो फिर क्या होगा? गीता समाप्त हो जाएगी। अर्जुन ने आखिर में लास्ट शब्द क्या कहा? कि मैं स्मृति स्वरूप हो गया हूं, अब मेरा सारा मोह नष्ट हो गया। मोह भी किससे कर रहे थे? बाबा कहते हैं कि जो चीजें दुख दे रही हैं, उनसे मोह में फंसे हुए थे। तो धीरे 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 करके बाबा ने, जैसे छोटा बच्चा होता है, बाबा ने कहा हम सब बच्चे हैं, चाहे हमारी आयु कुछ भी है, पर आत्मा के रूप में तो बाबा के बच्चे ही है ना। वो भी भगवान कहता है तुमको दास से, भगत से, चरणों की धूल मांगने वाले से मैंने बच्चा तो बना लिया। तो बच्चा क्या करता है? माता पिता सुबह कहते स्कूल जा, और वो नहीं जाना चाहता, बार बार नाद नखरा करता है। फिर माता पिता उसको कुछ लोभन देते हैं, प्रलोभन देते हैं, चॉकलेट देते हैं, थपकी लगाते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा है। वो हमको क्या देख रहे हैं भगवान? कि मैं अपने बच्चों का केवल भाग्य नहीं, पद्मा पदम भाग्य बनाने आया हूँ। पदम के आगे तो गिनती ही नहीं होती है ना, और भाग्य में सब कुछ आ जाता है। दुनिया के लोग, मोटी आंखों वाले, बाहर से देखने वाले, वो समझते हैं किसी को बंगला मिल जाए, सोना मिल जाए, धन मिल जाए, अनाज मिल जाए, पानी मिल जाए, तो बहुत बड़ा भाग्य है। और भगवान कहते हैं ये चीजें तो आपको, एक जाएगी तो दूसरी आएगी, ये सब भाग्य में इंक्लूड हो जाती हैं। जब कहते हैं किसी व्यक्ति को कुछ अच्छी चीज हो तो कहते हैं वाह मेरा भाग्य, तो भगवान क्या कहता है? वाह बच्चे वाह। हम कहते हैं वाह बाबा वाह, ये वाह किस लिए निकलती है? हाय हाय करने की बजाय वाह वाह निकलनी शुरू हो जाए, अंदर कोई कारण होगा ना कि बाबा हमको पद्मा पदम भाग्य दे देते हैं। आगे दो युग हमको कर्म करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ भाग्य को ही हम यूज करते रहते हैं। तो ऐसे स्वर्ग में जाने के लिए बहुत आसान सी विधि बाबा बताते हैं। तो जितना जितना उस विधि को हम स्वाभाविक बना लेते हैं, हमको उस भाग्य का इसी दुनिया में अनुभव होता है, अनुभूति होती है, जिसको हम कहते हैं अति इंद्रिय सुख। अब आप में से बाबा का कोई ब्राह्मण बच्चा नहीं है जिसको कभी ना कभी अति इंद्रिय सुख की अनुभूति ना हुई हो। खास तौर पे जब हम भट्टियां करते हैं, तो आप सब बताओ, जितने भी बाबा के लाडले ब्राह्मण बच्चे बैठे हैं, बाबा कहते हैं बच्चे समझे न समझे, जिसके बच्चे बन गए वो तो जानता है कि इनको मैं क्या बनाने वाला हूँ, ना भी बनना चाहे तो मैंने इनको बना देना है। तो ऐसे अति इंद्रिय सुख जिसको दुनिया में कोई प्राप्त नहीं कर सकता, उसकी अनुभूति आप सबको कभी ना कभी तो हुई है या नहीं हुई है? अगर हुई है कभी ना कभी, जिस कारण से आप यहाँ बैठे हो, तो आपको क्या करना चाहिए? हाथ उठा के बाबा का शुक्रिया करना चाहिए। वाह, तो शुक्रिया शुक्रिया तो हम करते ना, कई गीत बने हुए, बाबा तेरा शुक्रिया। पर किस बात का शुक्रिया? कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं। दुनिया में तो किसी को छोटी मोटी चीज दे दो वो शुक्रिया शुरू कर देता है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है। बाबा कहते हैं हम तो सारा जन्म शुक्रिया करते रहे, वो भी कम है, क्योंकि हमको बाबा दो युगों के लिए स्वर्गवासी बना देता। इसलिए बाबा कहते हैं कि मेरी विधि को केवल, जो बहुत सहज विधि है, क्योंकि भगवान की बताई हुई विधि है। आप देखेंगे जितना बड़ा डॉक्टर होता है, जितना अनुभवी डॉक्टर होता है, वो बड़े से बड़े रोग का भी जो इलाज करता है, उसमें मरीज को कम से कम तकलीफ देके करता है, और जितना छोटा डॉक्टर होता है वो तकलीफ ज्यादा देता है। और कई नीम हकीम खतरा जान होते हैं कि जो आपको तकलीफ ज्यादा देते इलाज कम करते हैं। तो नीम हकीमों के साथ तो हम दो युग रहे कि बोले आपको हम शांति दे देंगे, हम आपको सुख दे देंगे, जो चाहो दे देंगे। वो डॉक्टर मुस्कुराता है कि दुख की दुनिया में, कलयुग में कौन सुख दे सकता है? पहले खुद तो देखने सुख देने वाले कि वो कलयुगी हैं या सतयुगी हैं। तो कलयुगी डॉक्टर क्या करेंगे? तो कलयुगी उपचार करेंगे और उनके अस्पताल परमानेंट होते हैं। कहते हैं इतना पैसा दे दो, लाइफ मेंबर बन जाओ, आपको तकलीफ होती रहेगी, हम ठीक करते रहेंगे, समझा आपने? और सतयुग में तो हॉस्पिटल होता ही नहीं। तो ऐसा डॉक्टर जो बिना तकलीफ दिए, अगर सचमुच आप उसकी विधि को पूरा समझोगे, तो आपको बिना तकलीफ दिए। अष्ट रत्नों ने क्या किया? अष्ट रत्नों ने बिना किसी कष्ट के प्राप्ति कर ली। अगर आप गुलजार दादी जी के लास्ट अनुभव सुनो, एक बहन है यहाँ जो गुलजार दादी जी की नर्स रही है, बीके बहन है, जिन्होंने दादी जी के अंतिम समय में, बहुत सारे समय तक उनके साथ रहकर उनको देखा है। उसको मैंने कहा आप दादी जी के तुम्हारे अनुभवों की किताब छपवाओ, वो छपवा रही है, जो 11 मार्च को मिलेगी। आप उस, मैंने खुद उसके अनुभव सुने में 4 बारी रोया, आंसू आ गए मेरे। हम तो कभी सोचते ही नहीं थे कि डॉक्टर खुद हैरान है कि क्या ऐसी भी कोई आत्मा हो सकती है जो बिना एनेस्थीसिया लगवाए इतने सारे कष्ट देने वाले उपचार कर रही और उसको कोई तकलीफ ही नहीं है। कह रहे दादी आपका ऑपरेशन करना है, आप परम धाम में चले जाओ। तो 15 मिनट ऑपरेशन हुआ, फिर दादी ने कहा हो गया ऑपरेशन, और ना कोई एनेस्थीसिया लगाने। डॉक्टर कहते हमने ऐसा तो भी मरीज देखा ही नहीं। तो जो शरीर में रहते हुए आत्मा शरीर के हर प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाए, इस कारण से कि विधि को पूरा अपनाया। ब्रह्मा बाबा का भी हम देखते थे कि हर प्रकार की प्राकृतिक शारीरिक परिस्थितियां आती थी, ब्रह्मा बाबा ने कभी जाहिर नहीं किया। मातेश्वरी जी को मैं खुद देखता, शरीर छोड़ने से 20 दिन पहले ही मैं उनसे मिला था, और मेरे साथ उन्होंने पूरा नकी लेकर चक्कर लगाया था, पर उनके चेहरे पर पता ही नहीं लगता था, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि माता ईश्वरी जी को क्या कष्ट और 15 दिन के बाद शरीर छोड़ने वाली है। तो वो ऐसी भी स्थिति बाबा कहते हैं विधि से हो सकती है। चलो थोड़ा कम 108 को ले लो, जरा मासा कांटे जितना सकष्ट हो और आप सारे जन्मों के दुखों से मुक्त हो जाए। तो बाबा कहते हैं कि आप देख लीजिए, यादगार हैं कि मेरे बच्चे, चाहे वो 33 करोड़ वाला भी है, उसको भी भगवान ने ऐसी शक्ति दी हुई है कि सूली से कांटा हो जाए। और आगे आप जितना पुरुषार्थ कर लो, तन का कष्ट नहीं, मन का कष्ट नहीं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं, तो वो विधि भगवान इतनी आसान बताते हैं, करने वाले के ऊपर है। हम जितना कर ले, आप सबको अनुभव होगा कि हम जितना जितना करते हैं तो भगवान का लॉ है, जितने को उतना, जैसे को तैसा। बाबा ने बताया हुआ है, अगर मेरे श्रीमत पर या जो भी मेरे डायरेक्शन है, अगर उसको 20% फॉलो करते हो, आप सोच सकते हैं आपको 20% ही लाभ होगा। क्योंकि दुनिया के अंदर लौकिक में व्यक्ति निश्चय करके किसी कोर्स को करता है। किसी ने इंजीनियर बनना है तो पहले उसको निश्चय होता है कि इस इंजीनियर कॉलेज में पढ़ूंगा तो मैं इंजीनियर बनूंगा। यहाँ पर कोर्स करना शुरू कर देते हैं, निश्चय बाद में होता है और निश्चय बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो आजकल बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा कहते हैं मैं ऐसा डॉक्टर हूँ जो समय के साथ साथ, जैसे मेडिकल साइंस एडवांस होती है तो कई प्रकार की उनकी नई नई दवाइयां निकलती हैं, इसी प्रकार से बाबा कहते हैं ये स्पिरिचुअल ज्ञान भी इतना एडवांस होता है कि समय के साथ साथ नई नई विधियां बाबा बताते रहते हैं। आप देखेंगे जो आज से 20 साल पहले विधियां थी वो चेंज हो गई है। अगर उस विधि को भी हम यूज कर लें तो लास्ट मोमेंट पर भी हमारे प्राण बच सकते हैं, अर्थात भगवान हमें 21 पीढ़ी के लिए प्राण दान देता है। तो वो विधियां हमको देखनी है और हर विधि सहज है, चाहे वो शुरू में विधि थी। और बाबा कहते हैं मैंने तो पहले दिन भी बता दिया था, आज फिर बता रहा हूँ, एंड में भी बता देता हूँ कि तुमको पेपर क्या आएगा। اس لیے اب ہمیں چیک کرنا ہے. کسی بھی برہمن سے پوچھو کیوں بھائی ٹھیک ٹھاک چل رہے ہو, تو پہلا اتر کیا آتا ہے, ہاں ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. پھر دوبارہ پوچھو بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہے ہو, تو اتر تھوڑا سا بدل جاتا ہے. پھر کیا اتر آتا ہے, یہ جتنا چاہتے ہیں نا اترا نہیں ہے, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں. کیونکہ جب پہلے ہم سے پوچھا جاتا ہے تو ہم اپنے چینج جو ہمارے میں آ رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم کیا تھے کیا بن گئے, تو ٹھیک ٹھاک تو ہے. ایک پتا جی اپنے بچے کو جمع کرنا سکھا رہے تھے, جمع کرتے ہیں نا, تو انہوں نے کہا بیٹا 80 اور 120 کتنا ہوتا ہے, 80 اور 120 کتنا ہوتا, تو اس نے کہا جی 270. ٹھیک ہے, تو پتا جی نے اندر آواز لگائی کہ شاباش دیا اس کو, شاباش بچہ تو میرا نام روشن کرے گا, 80 اور 20 170, اور گھر میں اندر کا اس کو چاکلیٹ کھلاؤ. اب کوئی ویکتی سوچنے لگا کہ یہ کیسا پتا جی ہے, اور خود کو بھی اس کو جمع کرنا آتا ہے کہ نہیں آتا, 80 اور 20 جو ہے 170 کہہ رہا ہے. اچھا, تو پہلے تو اس نے سوچا آج کل کسی کی بات میں دخل دینا ٹھیک نہیں ہے دیکھنے والے, پھر اس نے کہا مجھے تو کہنے چاہیے. اس نے کہا جی آپ اس کو کیا سکھا رہے ہیں, 80 اور 20 170, اور آپ اس کو تھپکی بھی دے رہے چاکلیٹ بھی کھلا رہے ہیں. اس نے کہا تم کو پوری بات پتا نہیں ہے, کل اس نے 240 کہا تھا. سمجھا آپ نے, تو ارتھات یہ سمیپ آ رہا ہے ٹھیک اتر کے. اسی حساب سے جب ہم سے پوچھا جاتا آپ کیسے ہو, تو ہم 170 کو ٹھیک مان کے کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. جب دوبارہ پوچھا جاتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہو, تو پھر ہم سوچتے ہیں دوبارہ پوچھا گیا ہے شاید میں نے غلط اتر دے دیا ہے, پھر ہم اور سوچتے ہیں, تو سچی بات کہتے ہیں کہ بھائی جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا نہیں ہے, تو مارجن نکل آیا نا بیچ میں. اب ہم جتنا چاہتے ہیں اتنا کیوں نہیں ہے, اس کا مطلب ہوا کہ لکشیہ ہمارا کچھ بہت اونچا ہے. اور سچ مچ کسی سے بھی پوچھو سبھا میں تم رام سیتا بننا چاہو تو ایسے کرتے ہیں, اچھا, اور لکشمی نارائن کہنا چاہو لکشمی نارائن بنو گے تو پھر کیا کرتے ہیں, اندر میں سوچتے ہیں رام سیتا تو کہنا نہیں, پھر ادھر ادھر دیکھتے ہیں کوئی ہاتھ اٹھا رہا ہے, اچھا تاکہ میں ہی نہ بدھو بن جاؤں. تو جب وہ دوسرے دیکھتے اٹھا رہے ہیں تو اٹھانے والے بھی کیا کرتے ہیں, تو اٹھا بھی دو اور نہ بھی اٹھاؤ تو کیا کرتے ہیں, اچھا تاکہ بابا کہتے ہیں بڑے ہوشیار ہیں, کم سے کم رام سیتا کو تو نہ کرتے اور اس میں ایسے کرتے ہیں. اگر بابا کہے کہ نہیں ہاتھ اٹھا کے رکھو, جو جو سچ مچ لکشمی نارائن بننا چاہتے ہیں آپ کا فوٹو لیا جائے گا. ٹھیک ہے, آپ سوچتے ہیں بابا نے کہا ہے, میں نے بھی کہا میں نے بننا ہے, اب کیا کروں, تو پھر ہاتھ ایسے ایسے ہلتا رہتا. اب آپ سوچو ایسا کیوں ہوتا ہے, اس لیے کہ بابا کہتے ہیں جو ودھی میں نے بتائی ہے بہت آسان ودھی ہے, کبھی کبھی کر لیتے ہیں, تو جب وہ ودھی کرتے ہیں تو بہت پرسنتا بھی ہوتی ہے خوشی بھی ہوتی ہے, اور خاص کہتے ہیں آج میرا یوگ بہت اچھا لگا, ہے نا, آج میں بھٹی میں گیا مجھے بہت انبھوتی ہوئی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ پہلے نہیں تھی نا, تبھی تو آج ہوئی, اور پھر یہ بھی گارنٹی نہیں کرتے کہ کل بھی مجھے ہوگی. ٹھیک ہے, اسی پرکار سے یوگ کا پیریڈ کتنے بجے شروع ہوتا ہے؟ صبح 4 بجے. کتنے بجے ختم ہوتا ہے؟ 4:45. تو پہلے ریٹرن ٹکٹ لے کے آتے ہیں کہ 4 بجے یوگ لگانا ہے اور 4:45 بھول جانا ہے. پھر تو گیان کا پیریڈ ہو گیا نا. تب بابا کہتا ہے کہ یہ جو صدا ہم چاہتے ہیں صدا, تو صدا کے لیے ہمیں کرنا بھی صدا ہی پڑے گا. اتنی بات ہے, سب کو گیان ہے, سب کو پتا ہے, روز مرلی سنتے ہیں, ایک ہی مرلی سنتے ہیں. تو جو اس کو صدا کا مطلب ہوتا ہے اپنے جیون میں پورا لانا. اور کبھی کبھی کا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت بڑھیا کمائی کا سادھن مل جائے, بہت بڑھیا. ہماری کمائی کا بابا نے کہا گنتی تو ہے ہی نہیں, پر کسی کو سمجھنا ہو کہ بابا کے بچوں کی کمائی کیسے ہوتی تو اس کا فارمولا تو آپ کو پتا ہے نا, کہ بابا کہتا ہے ایک کے ساتھ 0 لگاؤ 10 ہو گیا, دوسرا 0 لگاؤ 100 ہو گیا. اس پرکار سے ہماری کمائی بڑھتی ہے. بندو بندو کرتے جاؤ, بابا کو یاد کرتے جاؤ, اور اگر آپ نے 10 0 لگا لیے تو آپ بتا نہیں سکتے کتنی کمائی ہوگی, کوئی گن بھی نہیں سکتا. اس لیے پھر کیا کرتے, خوش ہو جاتے ہیں. تو بابا کہتے ہیں کوئی ہیرے کی کھان پر جائے اور ایک ہیرا لے آئے کہ یہ بڑا ویلیوبل ہے, جا کے بیچیں گے تو 10 کروڑ مل جائے گا, وہ کھان کہاں گئی؟ اس لیے بھگوان کہتا ہے کہ وہ بندو بندو لگانے کی کمائی کا جو سارا دن کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا. اور پھر بابا کہتے ہیں سب سے بڑھیا طریقہ کمائی کرنے کا دوسروں کو کرانا شروع کر دو. تو آج کل بابا کیا کہتے ہیں کہ 100 پرشارت کا سمے سماپت, کیونکہ ہر چیز کا پرانے علاج کا سمے سماپت. آپ دوسروں کا سیوا کرنا شروع کر دو, آپ کی آپ ہی ہو جائے گی. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اگر میں کسی کو کہوں گا دیکھو کرودھ بہت خراب چیز ہے, میرے میں کرودھ ہے 20%, تیسرے کو کہوں گا کرودھ بڑی خراب چیز ہے, تو اس میرا پہ نکلے گا کہ میں دوسرے کو کہہ رہا ہوں خراب ہے, فیل بھی ہوگا, اس لیے میرا آپ ہی ختم ہو گیا. تو 2 فائدے ہوئے, اس کو بھی سمجھا دیا اور میرا بھی ٹھیک ہو گیا. تو پہلی بات یہ ہے 100 پریورتن کا پرشارت کرنے والے تریتا یوگ میں جائیں گے. سیدھی بات سمجھ لیجیے, جو دوسروں کی سیوا کرنے کا پرشارت کریں گے وہ سب یوگ میں جائیں گے. اس کو کہا جاتا ہے وشو سیوا, چاہے دو کی کرو, کرو باہر والے کی. اچھا, آج کل بابا کا سلوگن کیا ہے کہ بچے برہمن سو فرشتہ بنو, یہی ہے نا, اور ہم نے گیت بھی سنا. تو برہمن سو فرشتہ بنو کا کیا مطلب ہوا کہ اگر ہم ورتمان سمے جو بابا کہہ رہا ہے فرشتہ نہیں بنیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ نیکسٹ سلوگن کیا ہے؟ برہمن سو فرشتہ, اس کے آگے کیا ہے؟ فرشتہ سو دیوتا. ٹھیک ہے, اگر ہم برہمن سو فرشتہ نہیں بنیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ برہمن سو کشتری دیوتا گیا. سیدھی سیدھی بات ہے. اس لیے بھگوان کہتے ہیں اب ہم کو فرشتہ بننا ہی, اس وقت ہم کو اگر فرشتہ بن گئے تو ہم دیوتا بن جائیں گے. اب فرشتہ میں فرق کیا ہوتا ہے کہ فرشتہ بابا کہتے ہیں اس کے دو ستھان ہیں, ایک تو ہے جس کو ہم کہتے ہیں سوکشم لوک. سوکشم لوک میں فرشتے رہتے ہیں. برہما بابا کتنے ورش پہلے 1969 میں 18 جنوری کو فرشتہ بن گئے. ٹھیک ہے, کیوں بن گئے؟ کچھ سوچا ہوگا نا شیو بابا نے کہ اگر برہما بابا کو شریر میں رکھیں گے, بھلے برہما بابا نے سرو سمرپن کیا ہوا ہے, تن من دھن سمرپن کیا ہوا ہے, برہما بابا سے بڑا کوئی نہیں ہے جس نے ہر گھڑی ہر سنکلپ شیو بابا کو دیا ہوا, پھر بھی پوری کمائی کے لیے شریر تو ہے, तो शरीर को भोजन खिलाना है, शरीर को सुलाना है, शरीर को कहीं ले जाना भी हो, बॉम्बे ले जाना है, तो समय जाता है। तो शिव बाबा ने कहा ये आत्मा जो है ये 100% जाके नर से नारायण बनने वाली है, तो उसको फरिश्ता बना दो। अच्छा, उन्होंने तो जल्दी में कमाई कर ली। अब हमको भी बाबा कह रहा है कि मैं इतनी देर से वेट कर रहा हूँ कि बच्चे फरिश्ता बने और मेरे साथ चले, मैं नीचे भी इसलिए आता रहा हूँ कि ये ऊपर आ जाए, अब तो फरिश्ता बन जाओ। इसलिए बाबा कहते हैं आपका नाम ब्राह्मण बीके आदि समझ के चलोगे तो फिर खतरा हो जाएगा, क्योंकि लास्ट चांस है, नहीं तो फिर आप ब्राह्मण सो फरिश्ता नहीं बढ़े तो क्षत्रिय बनोगे, क्योंकि क्षत्रिय भी ब्राह्मण ही बनते। वो क्षत्रिय क्या करते, सो कल्याण मेरा, मेरी 16 कला संपूर्ण बन जाऊं, मैं सर्वगुण संपन्न बन जाऊं, ये करते 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 प्राण निकल जाते हैं तो तीर कमान आ जाता है कि युद्ध करते करते पूरा विजय नहीं पाए, इसलिए क्या करें। इसलिए अब हमको फरिश्ता बनना, तो फरिश्ता बनने के लिए आपको पुरुषार्थ भूल जाना पड़ेगा, क्योंकि पुरुषार्थ शब्द तो ब्राह्मणों का है, फरिश्ता का मतलब एक विधि है जिससे सिद्धि प्राप्त होती है। जैसे बाबा मनमना भाव कहते रहे ये विधि है जिससे तुम योग लगा सकते हो, कई पक्के मनमना भाव हो गए, उन्होंने संस्कार ही बना लिया, योगी जीवन ही बना लिया, और कई इस वक्त योग शुरू होता है, इस वक्त समाप्त होता है, इतने बजे मेरी भट्टी फलाने दिन शुरू हुई, इसके बाद भट्टी पूरी हो जाएगी, भट्टी तो पूरी हो जाएगी पर भट्टी से पकी हुई ईंट बने हम ये कहेंगे अगली भट्टी में फिर आएंगे, जैसे बाबा पहले कहता था अगली दिवाली नहीं आएगी, तो झूठ थोड़ी कहता था। जिन्होंने माना कि अगली दिवाली नहीं आएगी वो मतेश्वरी बन गए, जल्दी से जल्दी संपन्न हो गए। जो कहते कि बाबा ने अगली बारी भी कहा था शायद अगली आएगी, वो कहता वेट कर लो, मेरा क्या करता, बड़ी लंबी लाइन है। इसलिए अब फरिश्ता कैसे बने, ये है प्रश्न। तो फरिश्ते की बाबा ने क्वालिफिकेशन बताई हुई है। एक तो बाबा ने सबसे बड़ा रिट्रीट सेंटर सारे विश्व में एक हम बच्चों के लिए बना दिया, वो कहाँ है, दुनिया का सबसे बड़ा रिट्रीट सेंटर कहाँ है, गुजरात में है, इंडिया में है, अमेरिका में है, कहाँ है, हाँ? क्या बोलते हैं, अमेरिका में तो 300 एकड़ का रिट्रीट सेंटर है, लेकिन सूक्ष्म लोग, बाबा ने कहा कहाँ कहाँ जाते फिरेंगे बेचारे, ट्रेवल करे रिट्रीट सेंटर में, वो कहेंगे 7 दिन रहना है यहाँ, तो सूक्ष्म लोग बना दिया सारे बच्चों के लिए, ना उससे बड़ा कोई रिट्रीट सेंटर है, ना जैसे यहाँ ऑनलाइन से आप क्लास कर लेते हैं, ना रिट्रीट सेंटर में जाने का कोई समय फिक्स है, ना कोई लिमिट है, सभी आत्माएं रिट्रीट सेंटर जैसे बाबा का दिल तकता है, सारी आत्माएं कहता आ सकती हैं, बाकी कंडीशन है ना, कि दिल तखत तो है, हर एक को वेलकम है, लेकिन दिल तखत पे बैठने वाला सोचेगा ना, अगर किसी मैले कपड़े वाले को अच्छी कुर्सी दे दो जहाँ बैठ जा, वो भी हिचकिचाएगा कि मैं ये और मैं इस कुर्सी पे बैठूं, और साधु महात्मा होते हैं उनके ठीक कुर्सी भी तो पहले उसको झाड़ेंगे, फिर उस पर कुछ बिछाएंगे, तो तखत के लिए बैठने के लिए भी लायक चाहिए। परंतु बाबा कहते हैं सूक्ष्म रूप में आप सूक्ष्म बने तो आपके इस दुनिया के सारे जो जिसको आप कहते हैं कमी कमजोरियां वगैरह रहती नहीं, फरिश्ते में होती नहीं, फरिश्ते को तो एक संकल्प की उसकी स्पीड है, संकल्प किया पहुंच गए। आप कहेंगे कैसे, तो रात को आप सोते हैं सपना आता है कि नहीं आता, आप में से ऐसा कोई है जिसको सपना ना आता हो, कभी ना कभी आता है कि नहीं आता है। अब सपने में क्या होता है, आप खुद अनुभव करते हैं कि शरीर मेरा पड़ा है, अब आप सपना देख रहे हैं, कई सपने तो भयानक होते हैं, क्योंकि कलयुग है, पुराने संस्कार सामने आ जाते हैं, तो उसमें ऐसा डर लगता है कि आंख खुल जाए तो बड़े खुश होते हैं, अच्छा हुआ सपना ही था, पता नहीं क्या हो रहा था, है ना। परंतु कई सपने अच्छे भी होते हैं, लेकिन सपने में आपको हर चीज रियल लगती है या नहीं लगती है, और उसको का शरीर आपका यहाँ पड़ा है, तो सपना कौन ले रहा है? सपना आपका सब कॉन्शियस माइंड ही ले रहा है ना, मन से ही आप सपने ले रहे हैं ना। अब बताओ, जैसे हम सोने के बाद सपना लेते हैं, क्या आप जागते हुए सपना नहीं लेते? लोग कहते हैं ना, दिन में ये सपने देखता, हम देख सकते हैं, यहाँ बैठे हैं, शरीर में बैठे हैं, सूक्ष्म लोग चले जाओ, आपका मन ही जाएगा ना, सूक्ष्म शरीर ही जाएगा ना, परम धाम चले जाओ तो खाली आपका मन ही जाएगा, मन मना भव से आप परम धाम जा सकते हैं। बस इतना ही करना है कि बाबा कहते हैं जहाँ जाना है, क्योंकि अब हमारे जाने का टाइम आ गया, हम ना भी जाएंगे तो जाना ही पड़ेगा, तो बजाय इंसल्ट करा के सजा खा के सब यहाँ की पुरानी चीजों के फंसे रहे, फिर उससे मजबूरी से छुड़ाया जाए, तो अकलमंदी इसी में है। जब किसी को पता है कि मैंने जाना है, आप वापसी जाने की रिजर्वेशन पहले करा ले, तो यहाँ भी उसकी रिजर्वेशन बाबा ऑफर कर रहा है कि बच्चे जाना ही है, और पता नहीं दुनिया से तो कब चेंज होगा, लेकिन मैं तो कभी भी जा सकता हूँ, है ना। और आजकल ये भी नहीं है कि ओल्ड एज वाले जाएंगे, यंग एज वाले रह जाएंगे, आजकल ऐसा तो है नहीं। आप जो भी वीडियो देखते हैं बाबा की, अगली लाइन में आप देखते हैं, अच्छा ये थे आज नहीं है, ये थे आज नहीं, वो घटते ही जा रहे हैं, तो हमारा नंबर भी तो आना है ना। इसलिए यहाँ से भूल जाओ, अब हमारा नंबर समझो आ गया, तब बाबा कहता है कि लगातार प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि वो जब सेकंड आएगा, अगर उस वक्त आप उस सेकंड का फायदा नहीं लिया तो फिर आपका लाइन में लग जाओगे। इसलिए खाली एक तो अभ्यास करना है कि हम सूक्ष्म वतन में ज्यादा से ज्यादा रहें, और सूक्ष्म वतन में बाबा कहते हैं आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है। अगर आपको खाने पीने का शौक है किसी भी चीज का, तो वहाँ पर इमर्ज बाबा कर देगा, आपको मिठाइयाँ खाने का शौक है तो हर प्रकार की मिठाइयाँ इमर्ज कर देगा, और अब खा के जब थक जाओ तब वापस आ जाओ, क्योंकि सूक्ष्म ना फिर आपको शुगर की बीमारी की तकलीफ है, ना कोई और है, ब्लड प्रेशर है, कुछ नहीं, जितना मर्जी खाओ। तो बाबा कहते हैं संतुष्टि का भी मैं साधन दिया हुआ, आखिर तो मन ही संतुष्ट होता है ना, तो अगर सपने में मन संतुष्ट हो सकता है, सूक्ष्म वतन में जाके संतुष्ट हो सकता है, तो आपको कष्ट करने की क्या जरूरत है। आजकल भी ऑनलाइन मुरली सुनने की आदत पड़ गई तो कहते हम जाएं क्यों, उतना ही लाभ हो रहा है, हम खर्चा करें जाएं, तो भगवान कहते हैं ऑनलाइन ही है सबके लिए, और वहाँ आपको कौन मिलेगा, बाप दादा मिलेगा, और भी जिसको आप भी मर्ज करो, तो सबसे बढ़िया है हम ज्यादा टाइम जब फ्री है सूक्ष्म वतन में रहे। बुद्धि से तो रह सकते हैं, चलते फिरते फरिश्ता, अब फायदा क्या होगा। आप देखो एक मोटर कार खड़ी है, ठीक है, उसको धक्का लगाना है, तो एक छोटी कार खड़ी को भी धक्का लगाने के लिए दो लोग तो चाहिए, और अगर बड़ी कार है तो चार लोग चाहिए। केवल आप उस कार का इंजन स्टार्ट कर दो, फिर धक्का लगाओ तो क्या होगा, एक आदमी भी लगा सकता है, और तो कुछ नहीं हुआ, कार खड़ी है, अपने आप नहीं चल रही, लेकिन इंजन स्टार्ट होने से वो हल्का हो जाता। इसी प्रकार से हम हैं, हम सबके अंदर आत्मा है, तो हम हल्के हैं, हम दौड़ भी सकते हैं, आज आत्मा निकल जाए तो उठाने के लिए क्या होगा, भारी हो जाएंगे, चार व्यक्ति उठाएंगे 15 गज के बाद कहेंगे अब तू कंधा दे, ये भारी है ना। अब क्या हुआ, हवाई तो निकल गई कि नहीं निकल गई। तो इसी प्रकार से अगर हम सूक्ष्म हो जाएं तो आपको शरीर हल्का हो जाएगा। तो बाबा क्या कहता है, डबल लाइट बनो, आत्मा वैसे ही हल्की है, वैसे भी कोई स्वभाव से हल्का हो या कभी खुशी का मौका हो तो आप हल्के हो जाते हैं। गुजरात में तो खास तौर पे आप देखेंगे जब वो रास करते हैं, चाहे मोटा हो या पतला, उसको भूल जाता है। वो कहते हैं इनके साथ मैंने करना है, उस समय तो बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। हम भी जब कभी हमको खुशी होती है तो हम हल्के हो जाते हैं, और भय आ जाए या कोई कह दे तेरे खून में तो कैंसर है, अभी आपकी चाल कैसी हो जाएगी? कैंसर है, कैंसर है। एक मिनट पहले आपको बताया नहीं गया था तो आप ठीक ठाक थे, कैंसर सुनते ही चाल भारी होगी, पांव भारी हो जाते हैं। और कोई कह दे आपका ब्लड टेस्ट करके कि सारे माउंट आबू में मैंने ब्लड टेस्ट किया है, पर आप जैसा शुद्ध ब्लड किसी का नहीं है, तो फिर आपकी चाल कैसी हो जाएगी? है ना। इसी प्रकार से भगवान कहता है कि संकल्प का खेल है, संकल्प से ही सृष्टि है। तो पहली बात यह है कि हमको अपने संकल्प को विधि पूर्वक चलाना है अगर सिद्धि प्राप्त करनी है। आप देखोगे हर चीज का छोटा फॉर्म संकल्प है। जैसा आपको संकल्प होगा ऑटोमेटिकली वैसी आपकी वाणी हो जाएगी, वैसा आपका कर्म हो जाएगा। मान लो किसी को खिचड़ी पसंद नहीं है या दलिया पसंद नहीं है, उसके आगे दलिया ले आओ तो पहले ही उसकी भूख मर जाएगी, दलिया आ गया है। अच्छा, और उसको मान लो कोई चीज पसंद है वो आ जाएगी तो भूख लग जाएगी, कहेगा और लाओ। व्यक्ति वही है, इसलिए सारा मामला वृत्ति पर है, मनोवृत्ति या संकल्प का हो। तो सबसे पहले भगवान कहता है कि कमजोरी का संकल्प नहीं होना चाहिए, मैं परम धाम कैसे जाऊं। तो बाबा हमको स्मृति दिलाता है कि पहले पहले अपनी स्मृति को बनाओ, तब आप कर्म करो। हम बिना स्मृति के कर्म शुरू कर देते हैं, आ गए योग में बैठ गए। तो बाबा कहते हैं साधारण बैठे हो तो साधारण ही प्राप्ति होगी। अगर आप स्मृति रख के आओ, करे बाबा ने मुझे इतने वरदान दिए हैं, इतनी शक्तियां दी हैं, और पता है मुझे इस वक्त बाबा खास अमृत वेला है, मेरे को ताकत देगा, तो आपकी स्मृति चेंज हो जाएगी तो विधि से आपको ताकत देगा। तो बाबा हमेशा कहता है हिम्मत है बच्चे मदद है बाप, ये तो नहीं कहा कि सीधा ही मदद है बाप, एक स्टेप तो हमको करना पड़ेगा। तो स्टेप है संकल्प, इसलिए अपने संकल्प में आप रिश्ता रूप लाओ, मैं हूँ ही आत्मा हल्की। जो भी बोझ है बाबा कहता है इस वक्त मैं आपके सब बोझ लेने को तैयार हूँ, मैं सारी दुनिया के बोझ ले लेता हूँ, सारी दुनिया की कमजोरियां ले लेता हूँ। फिर हम क्या करते हैं, दे दिया, फिर बीच में मन मत लगाएंगे। आप देखोगे फिर हम कहेंगे नैया मेरी पार कर दे, फिर हम कहेंगे नैया थोड़ी रोक ले, मैंने इधर जाना है, आजकल इस कपड़े का फैशन है, थोड़े कपड़े तो ले लूं। भगवान कहता फिर काम गया। इसलिए अब डॉक्टर आपकी सर्जरी कर रहा है, और डॉक्टर मान लो आपकी आंख में दवाई ही डाल रहा है, सारे आंखों के मरीज हैं, तो आप कहते डॉक्टर जी दूसरे पेशेंट के तो आपने हरे रंग के ड्रॉप डाले थे, मेरे में लाल क्यों डाल रहे हो? अब वो क्या कहेगा, जा तू कहीं और चले जा, है ना। बाबा ये तो नहीं कहता, मुस्कुराता है, रहम करता है। इसलिए भगवान कहते हैं मन मत नहीं चलाओ, सहज विधि है। और ये भी है कि जिस समय जो काम करना है वो करोगे तो आपकी सिद्धि होगी। आपने ट्रेन पकड़नी है, आप दो मिनट भी लेट चले जाओ तो गई। हम क्या करते हैं, योग लगाना है, लगाना है, लगाना है, जब तक लगाने के लिए तैयार होते टाइम पूरा हो जाता। इसलिए जिसको हम एकाग्रता कहते हैं, एकाग्रता तो एक दो घड़ी की नहीं है, हर काम को अगर हम एकाग्रता से करेंगे, भोजन करना तो भी एकाग्रता से, किसी से बात करनी है तो भी एकाग्रता से, बाथरूम में नहाना है तो भी एकाग्रता से, मुझे कितना पानी प्रयोग करना है कितना, ये सारी अटेंशन रखेंगे तो उस वक्त भी अटेंशन रहेगी। अगर हम समझे बाकी चीजों में तो हम ढीले डाले हैं, अलबेले हैं, अचानक हम एक्टिव हो जाएंगे तो बाबा कहता है धोखा है। तो इसलिए इस शरीर में रहते हुए भी हम फरिश्ता रूप रह सकते हैं कि मुझे जाना है, मैं तो इसमें आत्मा आई हुई हूँ, इसको तो छोड़ना ही है, इसका ध्यान भी रखना है, लेकिन एक दिन मुझे इसको छोड़ना है। तो आप इससे न्यारे होके काम करोगे, भोजन करना है बाबा कौन कहता है नहीं करो, सिर्फ न्यारे होके करो, मुझे याद कर लो, वो तब होगा अगर हम अभ्यास करेंगे। तो बेसिक बात है विधि से सिद्धि प्राप्त करने के लिए बीच में अभ्यास चाहिए। अगर हमने लगातार अभ्यास नहीं किया होगा, जैसे कोई रोटी बनाने का अभ्यास करने वाला है वो बात भी करता रहेगा, अच्छी रोटी बनाता रहेगा। कार चलाने का अभ्यास है तो कार भी चलाता रहेगा, बात भी करता रहेगा। अगर अभ्यास नहीं है तो क्या होगा, वो रोटी की तरफ इतना ध्यान देगा रोटी जल जाएगी। होता है ना, आप साइकिल चलाना सीखते हैं कोई आपको सिखा देता है, वो कहता है अच्छा खाली ग्राउंड, उस व्यक्ति को टक्कर नहीं मारना, सारी ग्राउंड खाली पड़ी है, वो जाके उसी को टक्कर मारता, अभ्यास नहीं है। ऐसा होता है ना, तो इसलिए अभ्यास करना है। तो सार क्या हुआ कि वर्तमान समय हमें फरिश्ता रूप को धारण करना है, फरिश्ता रूप में के ऊपर भी अभ्यास करना, और यहाँ भी आप हल्के रहोगे और दूसरों की सेवा में लग जाएंगे, उसमें अपनी सेवा आ जाती है। ओम शांति।